ابو بکر صدیق جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی بیٹی کی گواہی موجود ہے کہ اپنے باپ کو خوشی سے روتا دیکھتی ہیں. کہتی ہیں اگر میں نے اس دن ابو بکر کو خوشی سے روتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ مانتی کہ خوشی سے بھی روتا ہے. کس بات کی خوشی تھی؟ کہ اللہ نے میری جان اور میرے مال کو اسلام کے لیے قبول کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں بیچارہ دین کا کام نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ کیوں؟ یعنی آج ہمارے یہاں دین کا کام کرنے کرانے والے بیچارے. ہاں جی، انہوں نے تب زندگی ادھر لگانی ہے نا. کوئی بیوہ، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی جس کا بچہ نہیں، کوئی بیچارہ اللہ رحم کرے آنکھوں سے اندھا، کہتے ہیں جائیں اس کو حافظ بنا دو، یہ لنگڑا ہو چکا ہے اس کو جاؤ مدرسے میں ڈالو، یہ میرا پتر، یہ بڑا اچھا ہے، یہ فلاں فلاں کالج میں جائے گا. صحابہ میں نیکیوں کا شوق تھا، صحابہ میں صدقہ خیرات کا شوق تھا، صحابہ ہجرت کے شوقین تھے، صحابہ قربانیاں کرنے والے تھے، صحابہ راتوں کو رویا کرتے تھے اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ، صحابہ کو سجدوں کا شوق تھا، رکوع کا شوق تھا. صحابہ کرام کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. جو مجھے سب سے بڑی ان کی خوبی لگتی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے راستے میں مشکل کو اپنے لیے آنر سمجھتے تھے. ہم صرف حج اور عمرے تک مشکل سہ کے آتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں کتنی سہولتیں ہیں، پھر بھی اس میں ہمارے ذہن میں کتنے سوال ہوتے ہیں. پھر ایک اور بات یاد رکھیے، لکھ لیجئے کہ صحابہ کو اپنے ایمان کی فکر تھی. حضرت حنزلہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نافق حنزلہ، نافق حنزلہ. ابو بکر ملے، حنزلہ کیا ہو گیا آپ کو، یہ آپ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کے جو دل کی حالت ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جنت آنکھوں سے دکھ رہی ہے، دوزخ سامنے ہے، دنیا بھول جاتی ہے. گھر آتا ہوں، بیوی بچوں میں پڑھتا ہوں، سب بھول جاتا ہے. اچھا، یہ معاملہ تو میرا بھی ہے. تو پھر اس کا تھا کہ ابو بکر بھی منافق ہے. دونوں اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو ان کو تسلی دی کہ اتنا فکر نہ کرو، جو حالت تمہاری میرے پاس ہو کر آتی ہے ذکر الہی کے وقت میں ہوتی ہے، اگر یہ تمہاری ہر وقت رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں آ کر تم سے سلام کریں. یہ تو وقت وقت کی بات ہے. صحابہ کو ایمان کی فکر تھی. آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں، ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے؟ جھوٹ بولنے والا ایمان والا ہوتا؟ اللہ کے نبی نے بار بار ایک جملہ بولا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. کہ اللہ کے نبی، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کاوٹ، بزدل کہاں ہو سکتا ہے؟ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ سٹنجی، مال کی مطلب کنجوس ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج آپ بتائیے، ہمارے اپنے ملک میں جھوٹ ہے؟ اللہ کی قسم، ایک جھوٹ تو ایسا ہے جو کبھی کوئی جھوٹ اب سمجھتا بھی نہیں. ابھی آتا ہوں، اور گھڑی دیکھے ایک گھنٹے بعد وہ ابھی آتی ہے، وہ بھی چار فون کرے. صبح 8 بجے نکلیں گے، ہم 12 بجے بھی نہیں نکلتے اگر کوئی ہمارے پیچھے ڈنڈا نہ لگائے. آپ کے ہر شادی کارڈ پہ ٹائم شادی کا کیا لکھا ہوتا ہے؟ اب تو وہ 10 بجے لائٹیں بند ہونے کا غم نہ ہو تو شاید ہم پھر بھی گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ نہ ہی پہنچے، کیونکہ ابھی تو ہمارا رات ہے، جب تک نہیں ہوگا. جھوٹ، جب تک آپ کے میرے اس ملک سے جھوٹ نہیں نکلے گا، یہاں اسلام غالب نہیں ہوگا. آپ دیکھیے اپنی زندگی کو، دیکھیے ہم سب اپنے اوپر دیکھیں. صحابہ کو نمازوں کا انتظار لگا رہتا تھا، گھڑی دیکھنے والی کیفیت ہوتی تھی کہ نماز میں وقت کتنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کیا آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں؟ صحابہ کو مسواک کا شوق تھا. ایک صحابی عامر بن ربیعہ کہتے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن ہی نہیں سکتا. آج ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جو مسواک کرتے ہیں؟ فطری طہارت کی بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ راتوں کو اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاؤں سوج جاتے تھے قیام میں. ایک جو چینج میں بہت ہر سال محسوس کر کے جاتی ہوں، اور میں نے پچھلے درس میں بھی یہ شاید لاہور میں یا کہیں جگہ کا ہے، میری نظر میں اگر بہت ساری جو ہمارے ملک کی پرابلمز ہیں نا، اس کا ایک سمپل حل ہے، لیکن اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا روڈ کا ٹریفک، غصہ، جھگڑے، لڑائی، سٹریس، فرسٹریشن، گھر میں شوہروں کا بیویوں پہ غصہ کرنا، بھاگتے میں نکلنا، یہ ختم ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنا سونا جاگنا وقت پہ کر لیں. سب سے بری چیز جو میں محسوس کرتی ہوں یہاں آنے کے بعد، کہ ہم لوگ وقت پہ سوتے نہیں ہیں تو صبح وقت پہ اٹھتے نہیں ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی بھی ہے 5 وقت کی نماز کی، فجر پڑھتے بھی ہے تو اس کے بعد سو جاتے ہیں. میں نے یہ چیز کئی سال نہیں دیکھی باہر، यकीन करें हमारी गाड़ियां अगर फजर के लिए निकलती हैं ना मर्दों की, तो वो अपनी जॉब्स के लिए 5-6 बजे अपनी गाड़ियां स्टार्ट कर देते हैं। बर्फ पिघलनी, निकलना, गाड़ियों को करना, वो कामों पे जा रहे होते हैं अक्सर। वहां नॉर्वे में तो बहुत ही एक्सट्रीम टाइम है ना, कभी 9 बजे भी जमात होती है फजर की, तो कभी 8-2.5 बजे भी होती है गर्मी सर्दी। लेकिन हमारे नेबर्स की गाड़ियां अमूमन 6 से 7 बजे के बीच में निकल जाती हैं, काम पे जाते हैं, और 7 बजे के बाद हॉर्न तो वहां वैसे ही कोई नहीं बजाता। आप कोई फालतू लाइट या शोर नहीं कर सकते, नेबर सो रहे हैं। और यहाँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अभी तो रात हुई है, अभी तो शुरू हुई है। अब जिसने रात को सोना ही 2 बजे है, कैसे 6 बजे उठे सुबह फजर के लिए? और फिर जब सुबह सोए दोबारा तो फिर 10-11 तो ऐसे ही बज गए। अब जिस मर्द को घर में 11 बज गए, बैंक टाइम 12 से 1 बजे खत्म होना है, तो वो निकलेगा ना गुस्से में, तो बेगम कहेगी सब्जी ला दें, बच्चे का दूध ला दें, तो गुस्सा आएगा ना। और माँ कहेगी मेरे बेटा दवाई ले आना, तो माँ पे गुस्सा आएगा ना। तो बाहर रोड पे रश होगा ना कि मेरा बैंक बंद हो रहा है। तो बैंक कभी बंद हुआ है आपको पता तो पहले ही था। सोना और जागना हमारा वक्त पे हो जाए, हमारी जिंदगी में कितना सुकून आ जाए। देखिए मैं अक्सर सोचती हूँ कि तहजीब एक चीज का नाम है। आप देखिए परिंदे, पौधे, दरख्त, पत्ते वक्त पे सोते जागते हैं, डिसिप्लिन के आदी नहीं रहे हम आज। जब चाहे खा लो, जब चाहो सो जाओ, जब चाहो ट्रैफिक पे चले जाओ, ये सिस्टम बदलने की जरूरत है। फिर साहबा की एक और आदत थी, गुनाह के छोटे से मौके को अपने लिए हलाक करने वाला समझते थे। हाय मैं हलाक हो जाऊंगा। हजरत अनस की रिवायत है कि हम नबी के दौर में उस गुनाह को, यानी कोई भी गुनाह कह रहे, हम ऐसे सोचते थे कि जैसे पहाड़ के पास खड़े हैं और वो हमारे ऊपर पहाड़ गिर जाएगा। आज के लोगों तुम उसको नाक पे मक्खी की तरह देखते हो, मक्खी बैठी उड़ा दी। और ये कब की बात है? जाहिर है कि सहाबा का दौर नहीं है तो ताबईन का ही होगा ना कोई सहाबी जिंदा था तब, तब का जुमला है। हजरत अनस सबसे आखिरी सहाबी थे जहाँ पे दौरे सहाबियत ख़त्म होता है और ताबईन का शुरू हो चुका था। 100 साल से ऊपर की इनकी उम्र थी और अल्लाह के नबी की दुआ थी इनको, इन्होंने खिदमत करके आपसे दुआएं ली थी। वो कहते हैं कि लोगों तुम अब गुनाहों को इतना हल्का समझते हो कि जैसे नाक में मक्खी बैठी और उड़ा दी। आज अगर अनस आते तो क्या कहते? आज गुनाह को नाक पे मक्खी छोड़िए, हमने नाक का मसला बना लिया, इज्जत का मसला, खानदान का मसला, शादी का मसला, फलां का मसला। तो याद रखिए कि सहाबा के अंदर गुनाहों को बहुत बड़ा समझने का तसव्वुर था। आज हम क्या कहते हैं? सब करते, क्या हुआ अगर मैंने कर लिया, ये कर लिया। फिर आप देखिए सहाबा में जिहाद का शौक था और सहाबा की माओ में अपने बच्चों को मुजाहिद बनाने का ख्वाब था। हजरत असमा को याद कर लीजिए, जुबैर की बीवी, अब्दुल्ला बिन जुबैर बेटा है, क्या बेटे को पैगाम दे के भेजती है। और जब बेटे की लाश देखी दरख्त से लटकती तो कहती है मेरा बेटा जिंदगी में भी ऊंचा था, मरने के बाद भी ऊंचा। वो माएँ थी, वो कहती सीने पे गोली खा के आना, मुझे ये ना लगे कि तूने मैदान जंग से जान छुड़ाई तो तुझे पीछे से गोली पड़ गई। ये माएँ थी। आज लफ्ज़ जिहाद बोलना भी हमारे लिए खौफ का और ख़तरे का अलार्म बन गया। कितनी माएँ हैं जो गोदों में खेलते बच्चों को ये लोरियां देती हैं कि बेटा इस्लाम के लिए कटना है। हम कहते हैं खुदा ना खास तो हमारा बच्चा शहीद हो जाए, हाय हमारे बच्चे मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। देखिए मौत तो अपने वक्त पे ही आनी है। फिर उसके बाद सहाबा का एक और अमल था और वो क्या था? सादा जिंदगी चाहते थे, सादा खाना। हजरत उमर फारूक की बात किसी ने शेयर की, अबू मूसा अहले बसरा के पास एक वफद के साथ हजरत उमर के पास आए। कहते हम रोज़ हज़रत उमर के घर जाते, 3 रोटियां होती थी, कभी रोटी के साथ सालन के तौर पे जैतून का तेल होता था, कभी घी होता था, और कभी दूध और कभी सूखा हुआ गोश्त जो उबाल दिया जाता था। यानी इतना सादा और आसान खाना होता था कि मैं हैरान था कि ये खलीफा है। कहते एक दिन हज़रत उमर ने कहा कि लोगों मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे खाने के बारे में अच्छा नहीं महसूस कर रहे, यानी कोई इतनी एलेबोरेटेड बड़ी दावत ही नहीं है। कहने लगे लोगों अगर मैं सबसे अच्छा खाना खाने वाला बनना चाहूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं भी सीने का गोश और कोहानों के सालन बनाकर रोटियों को डबो डबो के खाऊं, लेकिन मैंने अल्लाह के नबी और अल्लाह के कलाम से ये आयत जब से सुनी है, अजहब तुम तय ये बात फी हयातिकुम दुनिया, तुम लोग अपनी पाकीज़ा चीज़ों से दुनिया में फ़ायदा उठा चुके हो और तुम ले चुके, लिहाजा अब आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तो मैं भारी खाने नहीं खाता। आज हम अपने खानों पे भी ज़रा सी तो तवज्जो करें। पिछले हफ्ते में एक दर्स में बात की, मैंने कहा मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आपने लास्ट टाइम चिकन कब खाया था? तो आप हंसेंगे ना मेरी इस सवाल पे, हंसेंगे हंसेंगे ना, क्या बात करती हैं, सुबह चिकन नगेट खाए थे, दोपहर को कोरमा खाया, अभी हलीम बना के आए हैं और रात को जाके चिकन के पकोड़े खाने। सच है कि झूठ? मैं आपसे पूछूं कि बड़ी ईद के बाद आप में से किसने गोश्त खाया था? हंसेंगे ना। देखिए सवाल समझिए, किस तेज़ी से हमारे खाने पीने बदले हैं। और मुझे तरस आता है आज के बच्चों पे, जिसको नाश्ते में माँ फ्राई नगेट, पकोड़े और समोसे और न जाने क्या पैटिस बना के नाश्ता स्कूल में भेजती है साथ। ये नस्लें क्या करेंगी आज हमारी? तो ये चंद बातें थी इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला हमें सहाबा जैसा शौक अता करे, अल्लाह ताला हमारी इबादत भी अच्छी करे। आप देखिए कि बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटीज़ थी सहाबा की। घरों में होते तो बीवियों की खुशी का सामान होते, बाज़ारों में होते हलाल हराम का फ़र्क रख कर तिजारत करने वाले होते, मस्जिद में आते तो नमाजी बन जाते और जब जिहाद का मौका आता तो मुजाहिद बन जाते, इल्म की महफिल होती तो इल्म सीखने लग जाते। एक बैलेंस रवैये के साथ जब आप ज़िंदगी बसर करते हैं, दीन दुनिया उसी में रहती है। आज मेरा आपका इस पूरे मौके पे आखिर में क्या मैसेज है या क्या काम है? सबसे पहले तो हम अपने आप को देखें, मैं कौन हूँ, अपनी ज़िंदगी का बैलेंस ढूंढें। घर आपका साथ नहीं देता, आप अपनी ज़ात से काम शुरू कर दें। नमाज के वक्त पे नो कॉम्प्रोमाइज़, खाने का वक्त नमाज से पहले या बाद में, शादी में हैं कि मंगनी में हैं कि जहाँ भी हैं, आपने अपने दीन को सामने रखना है। देखिए बहुत सारी डिसऑर्डर है हमारे ताल्लुकात में, हम लोगों से डरते रहते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। दूसरी बात, आपके बच्चे, छोटे से लेके बड़े बच्चे, स्पेशली बड़े होते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चों को तो 10 मासियाँ आपके साथ काम करके पलवा देंगी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके बच्चे हैं। आप उनके अंदर सहाबा वाले जज्बे लाएं, उनको कहानियाँ सुनाएं, बहुत प्यारी प्यारी किताबें आजकल तो माशाल्लाह बच्चों को भी सामने रखते हुए बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सहाबा की खुद भी पढ़िए उनको भी सुनाएं। हयात सहाबा के दरख्शां पहले एक बुक है, 100 से ज़ायद मेरा ख्याल है उसमें सहाबा के नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पढ़ी हुई है, वेबसाइट पे भी होगी, आप ख़ुद पढ़ लें और भी कई लोगों ने पढ़ाई होगी, आप किसी भी तरह वो स्टोरीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर करें। फिर अगली बात ये कि अपने मर्दों के साथ, हस्बैंड्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशन बड़ा प्यारा ताल्लुक होता है, क्योंकि जब तक साथी साथ ना चले बात नहीं बनती। अल्लाह ताला ने आपको साथी दे दिए हैं और जिनको भी नहीं दिए उनके पास तो बहुत अच्छा मौका है। अपने बच्चियों के, बच्चों के रिश्ते करते वक्त इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें तो उनका साथी ढूंढते वक्त उसी मेयार का साथी ढूंढें। दुनिया की दौलत जितनी भी मिल गई, मर्द अगर नमाजी नहीं, हया वाला नहीं है तो फिर बेटी खुश नहीं रहेगी। इसी तरह बेटी आपने किसी की ले ली, चांद का टुकड़ा भी ले लिया, लेकिन दीन से दूर है तो घर में खुशी नहीं होगी। तो रिश्तों का मेयार दुरुस्त करना है। फिर अगली बात है कि रिश्ते के बाद शादी के मराहिल, देखिए इसको एक हल्की बात ना समझिएगा, शादी एक मजहबी फरीज़ा है, जब तक उसमें अल्लाह का दीन गालिब नहीं होगा बरकत नहीं आएगी। नमाज पढ़ते हैं ना, अल्लाह ना करे कल कोई नमाज में म्यूज़िक लगा ले तो नमाज कबूल होगी? नमाज मजहब है ना, इबादत है ना, तो शादी इबादत नहीं है। एक जुमला बस याद रखिएगा, जिस नबी के ज़रिए से नमाज का हुक्म मिला उसी के ज़रिए निकाह का हुक्म मिला, और निकाह के मौके पे गलत काम करना ऐसे जैसे नमाज के अंदर म्यूज़िक और गाना बजाना शुरू कर ले। सादी सादी ज़िंदगी बसर करें, आपका माल, आपकी कमाइयाँ, दुनिया में आपके अपनी ज़रूरियात और उसके साथ अल्लाह के दीन की नशर व इशाअत की तरवीज के लिए। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिन साथियों ने भी ये कोशिश की अल्लाह ताला उनकी ये कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।